लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि ख्रिस्तीय एवं अन्य सभी धर्मों के अनुयायी तथा समस्त शुभचिंतक लोग विश्व में शांति और न्याय को बढ़ावा दें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है एक मुलाकात कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, एक मुलाकात कार्यक्रम के अंतर्गत बिशप आनंद जोजो के साथ हुई भेंट वार्ता को प्रस्तुत कर रहे हैं। भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जिसमें बहुरंगी विविधता एवं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। इसके साथ ही यह अपने आप को बदलते समय के साथ ढलती भी आई है। आजादी पाने के बाद भारत ने बहुआयामी सामाजिक और आर्थिक प्रगति की है। विज्ञान एवं तकनीकी में भी बहुत अधिक तरक्की कर ली है। यह विविधता में एकता की बड़ी मिसाल पेश करती है। पर आज एक साथ अनेक चुनौतियां हमारी राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के सामने दीवार की तरह आकर खड़ी हुई है। हमारे लोकतंत्र पर खतरा के बादल मंडरा रहे हैं। धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ ही लोगों के लाभ के लिए देश के भविष्य को आकार देने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका असर नागरिकों के जीवन पर बुरी तरह पड़ रहा है। इससे देश के विकास को भी गहरा धक्का लगा है। ऐसे समय में इस खतरे का सामना करने की जिम्मेदारी न केवल राजनीतिक नेताओं को है, बल्कि प्रत्येक नागरिक को भी है। आज हमें गंभीरता से विचार करना है कि हम देश की एकता को बनाए रखने में किस तरह अपना सहयोग दे सकते हैं। हजारीबाग के धर्माध्यक्ष बिशप आनंद जोजो का मानना है कि आपसी एकता के द्वारा ही इन चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। उन्हें देश की जनता एवं माता मरियम की कृपा पर भरोसा है। तो लीजिए, प्रस्तुत है बिशप आनंद जोजो के साथ एक भेंट वार्ता। उनके साथ बात करें सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की।
ये समस्या सभी को, कम से कम मेरे अपने अनुभव से ऐसा लगता है कि सभी धर्माध्यक्ष, सभी पुरोहित, धर्म समाज भाई बहने, लोक धर्मी और इतना तक कि हमारे युवा पीढ़ी भी इससे अवगत हो चुके हैं और सब कोई महसूस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर केवल जरूरत है कि एक साथ प्रेरित होकर इस विपत्ति से उभरने के लिए एक ठोस कदम उठाना, और इसी की जरूरत है और हम इसी दिशा में काम करेंगे। चाहते हैं कि हम एक साथ मिलकर एक ही दिशा में हम लोग जाएंगे, एक ही कदम हम लोग उठाएंगे और इस तरह एकता ही इस समस्या का निराकरण का उपाय है। हम अपने समुदाय के अगुआ हैं, धर्माध्यक्ष के रूप में हम सबों को सोचने की आवश्यकता है और साथ ही साथ सभी लोगों को एक ही दिशा में ले चलने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि ईश्वर की भी यही इच्छा है कि हम इस तरह जो हमारे सामने जो बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लोगों के आर्थिक, सामाजिक और जो भी राजनीतिक स्थिति पैदा हुई है उसको निराकरण करें और ईश्वर की शक्ति इसी परिस्थिति में प्रकट हो, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए विचार करके एक ठोस कदम उठाएं, इसी की आवश्यकता है।
हजारीबाग धर्म प्रांत बहुत ही सौभाग्यशाली धर्म प्रांत है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि छोटा नागपुर की संरक्षिका ढोरी की माता हजारीबाग धर्म प्रांत में ही रहती हैं। उनका तीर्थ स्थान जारंडी में है। तो मैं जानना चाहूंगी कि उनकी भक्ति किस तरह है, लोग कितना विश्वास करते हैं, कितना उनके पास आते हैं।
ढोरी माता जरंडी, वास्तव में मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इस तरह केदम प्रांत की अगुवाई का मुझे भार मिला है। तो मैं पूरी तरह धार्मिकता के रूप में माता मरियम को ही अपना आदर्श के रूप में स्वीकार कर चुका हूँ और इस दिशा में मैं प्रयत्नरत हूँ कि ढोरी माता न केवल अपने धर्म प्रांत लेकिन पूरे क्षेत्र के लोगों का एक आदर्श बन पाए और इसलिए हमारा श्राइन वो उसको उसी रूप में मैं बनाना चाहता हूँ। पूरे वर्ष भर सभी तरह से लोग आते हैं माता मरिया के तीर्थ यात्रा के नाम पर और वहाँ पर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और अपने जो भी मतलब है उनको चढ़ाने के लिए आते हैं और यह सर्वविदित है कि बहुत कोई न केवल ख्रिस्तीय लेकिन अख्रिस्तीय गैर ख्रिस्तीय भी यहाँ पर आकर ईश्वरीय आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं और उनके जीवन में उनके परिवार में माता मरिया के द्वारा के मध्यस्थता के द्वारा बहुत से कृपाएं मिली हैं। विशेष रूप से कहा जाए तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके सब वहां आकर के इस प्रकार का आशीर्वाद पाए हैं। इसलिए ये स्थल बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरे झारखंड राज्य में, न केवल झारखंड राज्य के लोग लेकिन आस पड़ोस के राज्यों से भी लोग आकर के माता मरिया का दर्शन करते हैं, उसके मध्यस्थ द्वारा कृपाएं प्राप्त करते हैं।
अपने कैथोलिक विश्वासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
पूरे विश्व में देखा जा रहा है कि लोगों का विश्वास कमजोर पड़ रहा है और उसका असर हमारे परिवार पल्ली जितना भी हमारे संस्थाएं संगठन सब कुछ में दिख रहा है। इसलिए ये संत पेत्रुस का जगह है। पेत्रुस को यीशु ने विश्वास में मजबूत पाकर कलीसिया को सौंप दिया तो क्षेत्रीय कलीसिया भी विश्वास में मजबूत बने और जब विश्वास में क्षेत्रीय कलीसिया मजबूत तो बनेगी उसका सबसे छोटा रूप लेकिन अहम रूप है परिवार। परिवार में विश्वास बनी रहे और इस तरह सब कोई विश्वास के बल पर दुनिया के सभी चुनौतियों का सामना कर पाए। उनके बीच में सच्चा प्रेम हो, विश्वास के द्वारा प्रेम उत्पन्न होगा, प्रेम और एकता उत्पन्न होगा। इस प्रकार विश्वास प्रेम और एकता का जीवन बिताते हुए हम सबके सब जो यात्री कलीसिया हैं हम यात्रा जारी रखें और एक दिन पिता के घर या अपना जो वास्तविक घर है वहां हम पहुंच सके। विश्वव्यापी कलीसिया के सभी लोग ईश्वर के विश्वास पर और अधिक सुदृढ़ बन जाए।
तो अति माननीय बिशप आनंद जोजो आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस बहुमूल्य समय के लिए, आपके संदेश के लिए।
श्रोताओं, एक मुलाकात कार्यक्रम के अंतर्गत माननीय बिशप आनंद जोजो के साथ हुई भेंट वार्ता को सुन रहे थे।
त्राही त्राही के समय पराजय में हर समय, त्राही त्राही के समय पराजय में हर समय, येसु जी का नाम ही प्रेम दान है अभय, येसु जी का नाम ही प्रेम दान है अभय। त्राही त्राही के समय
आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटक दो नावों की सवारी। लेखक है माइकल होजेस। श्रोताओं, कई लोग दो नावों पर सवार होकर जिंदगी जीते हैं, कभी इस नाव में बैठ जाते और कभी उस नाव में। उदाहरण के तौर पर युवाओं को ही देखिए, पढ़ाई या काम के साथ साथ मौज मस्ती करना, दोस्ती करना सभी को अच्छा लगता है, पर कुछ लड़के मस्ती करने के लिए अनेक लड़कियों से दोस्ती करते हैं और प्यार करने का दिखावा करते हैं या बस टाइम पास करते हैं। उनके नापाक इरादों से अनभिज्ञ लड़की उसे प्यार कर बैठती है और भावी जीवन के सपने देखने लगती है और उसे सच्चाई का पता जब चलता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। प्यार में धोखा उन्हें गलत कदम उठाने हेतु मजबूर कर सकता है और मौज मस्ती के चक्कर में वह जीवन में सही निर्णय नहीं ले पाएगा। जीवन के प्रति इस तरह का मनोभाव एक दिन उसके लिए बहुत भारी पड़ेगा, जिस तरह आज के नाटक में मोहित को भारी पड़ा। अतः दो नावों पर पैर रखना कभी भी और किसी भी युग में उचित नहीं कहा जाएगा। तो आइए सुनते हैं माइकल होजेस का लिखा नाटक दो नावों की सवारी।
ये तुम्हारे आने का टाइम है?
क्या बजा है?
6:30 बज रहे हैं और तुम पूरे 15 मिनट लेट हो।
कभी कभी देर हो जाती है यार, इसमें इतना भड़कने की क्या जरूरत है?
तुम लड़की होते ना तब तुम्हें पता चलता। पता है अकेली लड़की को किसी का इंतजार करते देख लोग कैसे घूर घूर कर देखते हैं।
मुझे बताओ जरा किसने तुम्हें घूर कर देखा, मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा।
अब ये तुम्हारे फिल्मी डायलॉग छोड़ो और चुपचाप इधर बैठाओ।
बड़ी बेकरार थी तुम मेरे लिए, मुझसे इतना प्यार करती हो।
मोहित तुम जितना सोचते हो ना मैं तुम्हें उससे कहीं ज्यादा प्यार करती हो। और तुम
मुझे जितना प्यार करती हो मैं तुम्हें उससे कहीं ज्यादा प्यार करता हूँ। और पूछो क्या पूछना है तुम्हें?
तुम्हारा नाम मोहित है, किसी और लड़की को मोहित मत कर लेना तुम, बता देती हूँ मैं।
कैसी बात करती हो नव्या तुम, इस जमाने में भी तुम पिछड़ी हुई लड़कियों की तरह बातें करती हो।
तुम्हारा मतलब क्या है?
वही जो तुम्हारा मतलब है।
मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, शादी तुम्हें जिंदगी भर के लिए अपना बनाना चाहती हूँ।
मेरा भी यही इरादा है, लेकिन इतनी जल्दी शादी? कुछ दिन घूम फिर लें, जिंदगी का मजा ले लें, फिर तो शादी करना ही है।
तुम भी कमाते हो मैं भी कमाती हूँ, फिर शादी में देर किस बात की?
अरे हम दोनों को अपने घर वालों को मनाना भी तो पड़ेगा। अच्छा आज मैं जरा जल्दी में हूँ, ऐसा करते हैं परसों की तुम छुट्टी ले लेना, कहीं आउटिंग पर चलेंगे।
ठीक है
फिर मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। ठीक है बाय।
बाय।
बात है मोहित, आज तो जवान मर्द लग रहे हो।
क्यों, तो आज के पहले तुम्हें मैं क्या लगता था?
अरे मेरा मतलब है आज कुछ ज्यादा ही स्मार्ट लग रहे हो तुम।
तुम कौन सी कम लग रही हो साक्षी, इसलिए तो मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ।
कितना कितना प्यार करते हो?
उससे कहीं ज्यादा जितना तुम मुझसे करती हो।
मैं तो तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, पूरे समय तुम्हारे ख्यालों में ही खोई रहती हूँ।
फिर मेरे ख्यालों से निकलती कब?
जब तुमसे मिलती हूँ। सच कहती हूँ मोहित, अब तो तुम्हारे सिवा कुछ भी सोचता नहीं है, हर ओर तुम ही तुम दिखाई पड़ते हो।
अब ये फिल्मी डायलॉग बंद करके कोई दूसरी बात करोगी तुम?
दूसरी बात अपनी शादी की। शादी कब कर रहे हो तुम?
शादी? अरे कैसी लड़की हो तुम है? खेलने खाने की उम्र में तुम्हें शादी की सूझ रही?
अरे आज नहीं तो कल हमें शादी तो करना ही है ना, फिर हम कल का इंतजार क्यों करें?
ये अचानक आज तुम्हें शादी का भूत कहाँ से सवार हो गया?
क्योंकि अब तुम्हारे बिना जीना मुश्किल हो गया है।
फिर इसके पहले कैसे जीती थी तुम?
तब तुमसे मिलना ही नहीं हुआ था।
अजब लड़की हो तुम भी, कोई और बात करो। ये क्या शादी शादी की रट लगा रखी है तुमने? शादी ब्याह कोई बच्चों का काम नहीं है।
और प्यार करना बच्चों का काम है क्यों?
ओफो देखो साक्षी, प्यार में जो मजा है वो शादी में कहाँ है? शादी के बाद तो फिर वही घर गृहस्थी का चक्कर शुरू हो जाता है और क्या।
इसका क्या मतलब है? तो क्या फिर तुम शादी नहीं करोगे?
करूंगा यार, शादी भी तुमसे ही करूंगा, लेकिन इतनी जल्दबाजी भी ठीक नहीं है साक्षी।
सच कहूं मोहित, तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना?
ये तुम कैसी बात कर रही हो साक्षी?
मुझे धोखे से बहुत डर लगता है मोहित।
ठीक है यार, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, बस चलो अब मुस्कुरा दो।
सूरज आज पश्चिम से निकला है क्या?
अरे यार मैंने सोचा तुझसे मिले बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए आज चली आई। मगर तुझे तो ये भी नहीं होता ना?
अब यार फोन पर तो बात होती ही है ना?
वो तो कभी कभी, फोन पर बात करने का मजा और मिलकर बात करने का मजा अलग है यार। ऐसे ही कभी कभी तू भी आ जाए कर।
बात तो सही है यार। खैर और सुना कैसा चल रहा है?
सब बढ़िया चल रहा है, मस्त बीत रही है। तू सुना तेरा क्या चल रहा है?
मैं तो शादी की प्लानिंग कर रही हूँ आजकल।
वो तो मैं भी कर रही हूँ, पहले तू अपनी सुना फिर मैं अपनी सुनाती हूँ।
क्या सुनाऊँ यार, तू तो जानती है मेरा एक बॉयफ्रेंड है, उसका नाम मोहित है।
एक मिनट, क्या नाम बताया तूने? मोहित मोहित शर्मा?
हाँ मोहित शर्मा, लेकिन तू उसका सरनेम कैसे जानती है?
तू आगे तो बता, फिर बताती हूँ।
आगे क्या बताऊँ, मैं उसी मोहित शर्मा से शादी कर रही हूँ।
ये मोहित लंबा सा गठीले बदन का और भूरी आंखों वाला है?
हाँ मोहित ऐसा ही है।
वो लक्ष्मी प्रोडक्शन में असिस्टेंट मैनेजर है या नहीं?
हाँ बिल्कुल है, यही है मोहित, मोहित शर्मा। तू कैसे जानती है उसको?
क्योंकि वो तेरा ही नहीं मेरा भी बॉयफ्रेंड है।
हैं? ये तू क्या कह रही है?
मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ साक्षी, वह तुझे और मुझे मतलब हम दोनों को ही धोखा दे रहा है। उसने मेरे साथ भी शादी का वादा किया है।
मतलब ये कि वो सोचता होगा कि वह हम दोनों के साथ मजे कर रहा है और उसकी इस गंदी हरकत का हमें कभी पता भी नहीं चलेगा।
ये तो हम पुरानी फ्रेंड्स हैं तो हमें उसकी नीच हरकत के बारे में पता चल गया, वरना और भी कई होंगी जो हमें नहीं जानती और जिन्हें हम नहीं जानते।
नव्या ऐसी आदमी को तो हमें सबक जरूर सिखाना चाहिए, क्या कहती है तू?
बिल्कुल, हमारे समाज में आजकल कई गर्लफ्रेंड्स रखने में ऐसे लड़के अपनी शान समझते हैं, लड़कियों की भावनाओं से खेलते हैं और उनके जीवन से खेलते हैं, उन्हें बदनाम भी करते हैं।
पोल खुलने के बाद ऐसे लड़के ना इधर के रहते हैं ना उधर के होते हैं। इस मोहित की तो ऐसी हालत करना है कि ये भी अब ना इधर का रहे ना उधर का।
ठीक है, तो कल अर्जेंट के नाम पर इस मोहित के बच्चे को मैं इंद्रवाटिका में बुलाती हूँ और फिर हम दोनों होंगे और वो होगा अकेला।
ठीक है, कल शाम का रख लेते हैं, मैं तुझे लेने आ जाऊंगी, फिर दोनों साथ ही चलेंगे। ठीक है?
ठीक है साक्षी। क्यों मोहित जी, आज हम दोनों को एक साथ देखकर तुम्हारे चेहरे की रंगत क्यों बदलने लगी?
तुम्हारे जीवन में तो मेरे सिवा और कोई लड़की नहीं थी, फिर ये कौन है?
इसने मुझे भी यही सब कहा था।
मैं समझ सकती हूँ नव्या, ये एक ही डायलॉग मेरे और तेरे हम दोनों के सामने बकता होगा। क्यों, तुमने क्या सोचा था कि तुम्हारी पोल कभी नहीं खुलेगी?
और तुम अपने दोस्तों के सामने अपनी गर्लफ्रेंड्स की शेखी भगाते रहोगे?
पाप का घड़ा जब भी भरता है एक दिन फूट ही जाता है।
तुम जैसे पापी कितना भी छिपाकर पाप करे उनका पाप एक दिन उजागर हो ही जाता है।
तुम्हें तो सरेआम सड़क पर कोड़े लगाने चाहिए, चप्पलों से तुम्हारी पिटाई करनी चाहिए, लेकिन फिर तुम्हें और हमें क्या फर्क रह जाएगा?
सॉरी साक्षी, सॉरी नविया, मुझे माफ कर दो, मैंने सचमुच तुम्हारी भावनाओं के साथ खेला ही नहीं बल्कि तुम्हारी भावनाओं को ठेस भी पहुँचाई है।
अगर तुम्हारी तरह कोई तुम्हारी बहन के जीवन से खेले तो तुम्हें कैसा लगेगा? लड़कियाँ क्या सिर्फ खेलने के लिए होती है?
वो तो अच्छा है कि वक्त रहते हमें तुम्हारी सच्चाई का पता चल गया, वरना तुम तो हमारे साथ भी अपना घिनौना खेल खेल चुके होते।
हमें एक साथ देखकर चौंकने की जरूरत नहीं है, हम दोनों सहेलियां हैं। तुम जैसे वे लोग जो एक साथ दो नावों की सवारी करना चाहते हैं, वो ऐसे ही नदी में डूब जाते हैं।
फिर वो ना घर के रहते हैं और ना घाट के, किसी को धोखा देने वालों का यही अंजाम होता है। धोखा देने वाला सोचता है कि कोई नहीं देख रहा और समझ रहा, लेकिन ईश्वर सब देखता है।
और वही धोखा खाने वाले लोगों को बचाता है और धोखा देने वालों को सजा देता है।
मैं तुम दोनों से वादा करता हूँ कि आज के बाद किसी भी लड़की को न तो धोखा दूंगा और न ही उसके जीवन से खेलूंगा।
समझदारी भी इसी में ही है, हमसे तो सस्ते में छूट गए हो, आईना ध्यान रखना।
ठीक है, आज मैं जीवन की सच्चाई को जान गया हूँ कि अगर कोई मेरी बहन के साथ कोई ऐसा करता तो मुझ पर क्या बीतती। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ।
दो नावों की सवारी। अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इस नाटक के कलाकार थे अमृता वकील, नम्रता तिवारी और माइकल होजेस। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।